मेरे अत्यंतात्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 27 फरवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और साथ ही स्वागत करता हूं दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस में एडमिशन लिया है। इन दोस्तों के नाम हैं नितेश शर्मा आगरा से और चितवन कुमार जहानाबाद बिहार से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपसे हिंद प्रशांत क्षेत्र इसके बारे में कुछ मूलभूत बातें करूंगा, लेकिन आइए इससे पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। कल कैबिनेट की मीटिंग थी और कैबिनेट ने कुछ डिसीजंस लिए हैं। मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाता हूं कि खासकर बृहस्पतिवार के सुबह के अखबारों में आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा और बुधवार के शाम की खबरों में आपको बकायदे कैबिनेट डिसीजन के बारे में जानकारियां मिलती हैं। आपको चाहिए कि कैबिनेट जो डिसीजंस लेती है उसे आप थोड़ा सा ध्यान से सुने, क्योंकि कैबिनेट का डिसीजन ही मान लीजिए कि सरकार के डिसीजंस होते हैं। अगर पार्लियामेंट में कोई एक्ट भी मतलब कोई बिल भी जाएगा तो कैबिनेट डिसीजन के बाद ही वह जाता है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और खासकर किसी भी टॉपिक को अपडेट रखने के लिए आपको इस पर ध्यान देना ही चाहिए। तो कल कैबिनेट ने दो इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो मित्रों की जो राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन है इसकी स्थापना की बात की गई है, बजट में भी इसकी घोषणा की गई थी और इसके लिए 1480 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये बहुत ही सामान्य सी ही जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा यह है कि जो सैरोगेसी एक्ट जो पहले पारित संसद के एक सदन के द्वारा पारित हो गया था, फिर समिति को सौंप दिया गया था, समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, तो अब जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है वो यह है कि पहले यह था कि जो सैरोगेसी मदर बनने का जो अधिकार था वो केवल रिलेटिव्स को था, अब उसमें थोड़ा सा विस्तार कर दिया गया है और वो यह है कि अब तलाकशुदा महिलाएं यानी कि जो डिवोर्सी हैं और जो विधवा महिलाएं हैं वे भी सैरोगेसी मदर बन सकेंगी। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन जब ये बकायदे विधेयक पारित हो जाएगा इससे संबंधित तो हम लोग इस पर फिर विस्तार से बातें करेंगे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की जो अभी स्थिति रही है, खासकर आप देख रहे हैं कि दिल्ली किस प्रकार से हिंसा की लपेट में है और उसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट काफ़ी कुछ संवेदनशील स्टेटमेंट है ना। आप इससे पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह की टिप्पणियां करती हैं तो आपके दिमाग में दर्ज होनी चाहिए। कभी कभी होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर के ही सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और चूंकि अभी जो टिप्पणी की है ये पुलिस व्यवस्था के ऊपर है और पुलिस आप तो IPS में भी जाना चाह रहे होंगे ना, इंडियन पुलिस सर्विस में, तो सीधी सी बात है कि अगर पुलिस पर वो टिप्पणी की गई है तो ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है, और खासकर इस संदर्भ में तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स अभी IPS देते हुए इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएंगे तब तो मुझे लगता है कि यह प्रश्न पूछा ही जाएगा। और देखिए, वैसे भी जब हम सिविल सर्विसेज टॉपिक की तैयारी करते हैं, टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, सिविल सर्विस की नहीं, सिविल सर्विस अपने आप में एक टॉपिक भी है आपका, तो उसमें पुलिस में क्या सुधार किए जाने चाहिए वह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो यह है कि जो पुलिस का जो रवैया है वो प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है यानी कि पुलिस को जो ड्यूटी निभानी चाहिए वह ड्यूटी वह नहीं निभा पा रहा है, और यही जो दिल्ली में अभी अशांति फैली, जो हिंसा हुई, उसकी जड़ की असली जड़ यही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस ने पहले ही यदि कुछ किया होता तो स्थिति इतनी खराब न होती। आपको ब्रिटेन की पुलिस से सीखना चाहिए, वहां यदि कोई भड़काऊ भाषण देता है तो वहां की पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। यानी कि कहने का मतलब है कि यह घटना अचानक नहीं घटी है, अचानक नहीं घटी है, पहले भड़काऊ भाषण दिए गए, जिन लोगों ने भी दिए उन भड़काऊ भाषण के आवेश में आकर के कुछ लोगों ने एक्शन करना शुरू कर दिया, फिर जब कुछ लोगों ने एक्शन किया तो उसके रिएक्शंस हुए, दूसरे पक्ष ने भी फिर अपनी कार्रवाई की और इस तरीके से फिर हिंसा की आग इतनी फैल गई कि लगभग 27 लोगों की मृत्यु की खबर है। आप सोच करके देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है और ये हमारे देश की राजधानी में हो रही है और इस दौर में हो रहा है जब अमेरिका के प्रेसिडेंट भारत के दौरे पर हैं, और भारत के दौरे पर ही नहीं है बल्कि दिल्ली में हैं। देखिए, इन सबका असर क्या होता है, इन सबका असर बहुत ज़्यादा वैश्विक भी होता है। वैश्विक इस मायने में कि जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि विदेशी निवेश हमारे यहाँ आए, विदेश के लोग आकर के हमारे यहाँ उद्योग लगाएं, तो उनके दिमाग में इमेज क्या बनेगी कि अगर वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है तो वो क्यों आना चाहेंगे। तो एक यूं कह लीजिए कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी यह कहीं ना कहीं एक तरह से नकारात्मक रोल प्ले करता है इस तरह के कानून और व्यवस्था की जब स्थिति होती है तो। और वैसे भी पुलिस में सुधार, यह आपका एक टॉपिक है और कभी कभी इस पर क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं, मेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके तहत आप एक पॉइंट को ये दे सकते हैं कि पुलिस को प्रोफेशनल बनाना होगा। जब यहां हम कह रहे हैं प्रोफेशनल बनाना होगा तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी पुलिस की ट्रेनिंग नहीं हो रही है, उसके पास हथियार नहीं है, वो काम करना नहीं जानती है। यहां जो सुप्रीम कोर्ट का जो अप्रत्यक्ष रूप से जो संकेत है वो ये है कि शायद हमारी जो पुलिस है वो दबाव में काम करती है, और जब हम दबाव की बात कर रहे हैं तो वो सीधे सीधे राजनीतिक दबाव से जुड़ा हुआ है कि शायद पुलिस को वो आदेश नहीं दिए जाते जो वास्तव में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए दिए जाने चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको तीन शब्दों के बारे में खासकर बताना चाह रहा हूं, और ये तीन शब्द हैं CAA NPR NCR। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार के असेंबली ने अभी कुछ इस तरह का प्रस्ताव पारित किया है। CAA के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, नागरिकता संशोधन कानून। यहां जो सी है उसका संबंध है सिटीजन से, है ना, ए का अमेंडमेंट ए फिर एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून। जो दो अलग बाद के शब्द हैं NPR का मतलब है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, एन नेशनल, पी पॉपुलेशन, आर रजिस्टर। ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाने चाहिए क्योंकि अखबारों में इन शब्दों का बहुत प्रयोग हो रहा है, और मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट इसको लेकर के कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, और अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन हो जाता है तो मान करके चलिए कि अब जो पढ़ेंगे आप वो गड़बड़ हो जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, ये जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है ये बेसिकली जनसंख्या के प्रोफाइल को जानने के लिए है। इनफैक्ट अभी बिहार असेंबली ने जो पारित किया है वो ये किया है, उसने साफ कह दिया है कि हमारे यहाँ NRC लागू नहीं होगा। NRC का मतलब है, N को देखिए नेशनल, R का मतलब है रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यह है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। देखिए दोनों में रजिस्टर है लेकिन पहले वाले में जनसंख्या है, मतलब जनसंख्या के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। यह तो इससे पहले भी हो चुका है, 2010 में हो चुका है, और बिहार असेंबली ने कहा है कि ये जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है वो हम अपने यहां होने देंगे बशर्ते कि इसका जो फॉर्मेट हो वो 2010 जैसा भी हो, क्योंकि उसमें जो फॉर्मेट था उस समय तो किसी व्यक्ति के माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया था, निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया था, और ये भी नहीं पूछा गया था कि आप पिछले इससे पहले कहां रह रहे थे। अगर इसी पैटर्न पर होगा तो ठीक है, हम इसे मानने को तैयार हैं, अपने यहां लागू होने देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो NRC है वह लागू नहीं होगा। देखिए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, अभी जो विरोध हो रहा है वो किसको लेकर के हो रहा है, नागरिकता को लेकर के हो रहा है, तो जो संदेह है वो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर के है लोगों के मन में कि इसका संबंध नागरिकता से है, तो कुछ लोगों की नागरिकता कैंसिल हो सकती है। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि इसका संबंध नागरिकता छीनने से नहीं है, लेकिन अब जनता के मन में यदि कोई संदेह पैदा हो जाता है तो उसे दूर करना भी उतना आसान नहीं होता। तो ये जो तीन शब्द हैं, ये तीन शब्द आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होने चाहिए। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और आज का मुख्य विषय मैंने कहा कि यह है इंडो प्रशांत क्षेत्र, जिसे आप कहते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र, और ये जो इंडो प्रशांत क्षेत्र है ये अमेरिका ने कहना शुरू किया है। इंडो का मतलब यहां इंडिया से है। देखिए जब आप इंडो प्रशांत क्षेत्र कहते हैं, और ये बार बार ये शब्द आने लगा है और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए, तो आप नक्शे पर जाइए और देखिए कि जो हिंद महासागर है, है ना, हिंद महासागर, ये हिंद प्रशांत क्षेत्र कहा जाता है, तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर देखिए कि ये कहां कहां तक फैला हुआ है। तो भारत जो इसके क्षेत्र को मानता है वो बकायदे अफ्रीका का तट एक तरफ, और वहां से लेकर के और फिर वो अमेरिका के तट तक, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को, मतलब उस पूरा का पूरा हिस्सा जो भारत है इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र मानता है, राइट। जब आप इस पूरे के पूरे हिस्से को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर इतनी बात क्यों हो रही है, क्योंकि अमेरिका जो अभी भारत को इतनी तरजीह दे रहा है उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अमेरिका भारत के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र पर निगरानी करना चाह रहा है, या कह लीजिए कि अपनी पकड़ बनाए रखना चाह रहा है। उसका कारण यह है क्योंकि चीन इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखना चाह रहा है। इसी के तहत आप दक्षिण चीन सागर का भी नाम सुनेंगे, तो दक्षिण चीन जो सागर है, बेसिकली चाइना जो सागर है, वो हिंद प्रशांत क्षेत्र का ही हिस्सा है। बड़ा सागर तो प्रशांत सागर है ना दोस्तों। ये जो इंपॉर्टेंस इस जगह की है वो दो तीन कारणों से है। जो सबसे पहला बड़ा कारण है कि वर्ल्ड ट्रेड का सोचे कि 75% वस्तुओं का आयात निर्यात का जो रूट है वो यही है, सोच के 75%। और इसी जगह पर, इसी के तट पर विश्व के जो सबसे बड़े और जो सबसे व्यस्त बंदरगाह हैं वो हैं, और होगा ही, जब इतना बड़ा व्यापार इससे हो रहा है तो जो वहां के जो बंदरगाह होंगे वो भी व्यस्त होंगे। और जो वर्ल्ड जीडीपी है, उस वर्ल्ड जीडीपी में 60% जो योगदान है वो इसी क्षेत्र से होता है, इसी क्षेत्र से। सोच करके देखिए, टोटल 38 कंट्री इसमें शामिल हैं और इस पूरे के पूरे क्षेत्र में विश्व की लगभग 65% आबादी रहती है, तो इससे आप उसके लोकेशन के महत्व को समझ सकते हैं। भारत के लिए जो इसका महत्व है वो डेफिनेटली समुद्री व्यापार को लेकर के है। हमारा जो समुद्री व्यापार है जो सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र से होता है, जब दुनिया का हो रहा है तो भारत का भी हो रहा है। और भारत के लिए जो तेल का आयात होता है वो तो लगभग पूरा का पूरा आयात इसी के माध्यम से होता है, तो आप सोचिए कि भारत के लिए तेल कितना इंपॉर्टेंट है। फिर इस क्षेत्र में कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके साथ भारत के बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। भारत अपने दक्षिण पश्चिम की ओर देखो नीति अपना रहा है, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को अपने घनिष्ठ बना रहा है, साथ ही वो तो वियतनाम में तेल की खोज भी कर रहा है। तो इन सब दृष्टियों से उसके लिए भी हिंद प्रशांत क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस पूरे के पूरे क्षेत्र की जो लोकेशन है रणनीतिक दृष्टि से अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सच पूछे तो भारत नहीं चाहता कि इस पूरे के पूरे एरिया पर किसी एक देश का आधिपत्य हो। लेकिन भारत और अमेरिका के विचारों में यहां जो थोड़ा सा अंतर है, देखिए, भारत भी नहीं चाहता कि किसी एक देश का आधिपत्य हो, लेकिन हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर के भारत और चीन के बीच में कोई विवाद नहीं है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण चीन सागर या प्रशांत महासागर, क्या कहते हैं, हिंद महासागर, वहां के लिए भारत चीन के प्रति थोड़ा सा सतर्क जरूर है, लेकिन हिंद प्रशांत क्षेत्र तो उससे भी एक बड़ा एरिया हो गया ना, उसको लेकर के भारत और चीन के बीच में कोई तनाव नहीं है। लेकिन जो अमेरिका है वो डेफिनेटली यहां अपना दबदबा चाहता है, जबकि भारत नहीं चाहता कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में किसी एक देश का दबदबा हो। तो इसकी जो पृष्ठभूमि है मित्रों, हिंद प्रशांत क्षेत्र की और भारत की दृष्टि से, विश्व की दृष्टि से, तो उसके मैं थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दी है, ताकि इस पर जब आप कोई भी आर्टिकल पढ़े, मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के अभी कुछ लिखा जाएगा, तो आप उन्हें अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।